أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. وإلى عاد أخاهم حودا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ الصلات والسلام کو. قال، اور فرمایا ہود علیہ الصلات والسلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اور تمہارا نہیں ہے کوئی خدا، کوئی معبود اس کے سوا. افلا تتقون، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا حضرت ہود علیہ الصلات والسلام کو. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم عاد والوں کے بھائی تھے، تو کیا وہ واقعی ان کے ریئل بردر تھے، یعنی سچے بھائی؟ یا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں، یہ قوم کے بھائی جیسے ہوتے ہیں. ایک قوم کے لوگ ایک قوم کے بھائی کہلاتے ہیں، ایک ہی برادری کہلاتی ہے. یا برادری کے لوگ کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں بھائی برادری ہے، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا قوم کے بندے تھے یا برادری کے بندے تھے، اس حساب سے یہ بھائی تھے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف بھیجا. قوم عاد کون سی تھی؟ تھوڑی بہت اس کی تحقیق مفسرین نے لکھی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں پانچویں جنریشن، پانچ جنریشن کے بعد یہ قوم عاد آئی، اور جن میں یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا. اصل چیز جو اس مبارک آیت کی ہے کہ یہ خطاب جو انہوں نے کیا، یہ بالکل وہی ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم عبادت کر اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے. تو دیکھیں، سارے انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف جڑ جاؤ. تو یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف انوائٹ کرنا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یہ انبیاء کا کام تھا. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے جو آخری دم تک، آخری بندہ بھی جو دین کی بات پہنچائے گا دوسرے کو، اس کے ساتھ میری دعائیں ہیں. تو جو دوسروں کو دین کی بات کرنے والا بن جاتا ہے، جو اس کو ایک اپنی فکر بناتا ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. تو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ کام بھی انبیاء والا ہے، اور یہ کام جو کرتا ہے، جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے، اور اس کی فکر ہونی چاہیے. ہاں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی نہیں کہ ہر بندہ بس دوسروں کے اوپر हावी हो जाए, बल्कि इस काम को हिकमत से किया जाए और अच्छे वाज के साथ किया जाए। ये भी कुरान का हुक्म है। तो बहरहाल हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम आद की तरफ भेजा और उन्होंने वही पैगाम दिया। और पैगाम क्या था कि तुम इबादत करो अल्लाह रब्बुल इज्जत की। इबादत करने वाले लोग अल्लाह को पसंद हैं। कितने पसंद हैं इस बात से ही अंदाजा लगा ले कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब से को हुक्म दे दिया, वस्बिर मअल्लज़ीना यदउन रब्बहुम, कि ए महबूब आप भी अपने आप को उनके साथ जोड़े रखें जो सुबह और शाम हमारी इबादत में हमें पुकारने में मशगूल हैं। अल्लाह अकबर। तो देखें ये इबादत करने वाले लोग अल्लाह को कितना पसंद, ये इबादत का पैगाम कितना स्ट्रॉन्ग पैगाम, ये इबादत करना ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह फरमा रहे वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने तुम्हें पैदा ही नहीं किया सिवाय इसके लिए कि तुम हमारी इबादत करोगे, बस ये काम है असल। तो इबादत पर इस्तकामत होना, इबादत करते करते मरना और मरते मरते करना, ये असल काम है मोमिन का। अब ये कैसे मुमकिन है कि जी इबादत में कभी कमी ना आए, इबादत पे हम डट जाएं, इबादत से हम आगे पीछे ना हो जाएं? क्योंकि शैतान जो है वो आगे पीछे करने के लिए तैयार है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है और शैतान तुम्हें रोकता है अल्लाह की याद से। शैतान इबादत से रोकने के लिए लगा हुआ है और अल्लाह फरमा रहे मुझे चाहिए ही वो ही बंदा जो इबादत करने वाला। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि जी हम कैसे इबादत करने वाले बन जाएं, या कैसे हम वो लोग बन जाएं जो इबादत पे डटे रहें, अपनी जिंदगी भर लगे रहें, इससे पीछे ना हटें। तो वो इबादत करने वाले लोगों की सिफत क्या होगी, कौन से वो लोग हैं जो इबादत से हट नहीं पाएंगे, कोई उनको हटा नहीं सकेगा? तो मशाइख ने फरमाया कि तीन किस्म के लोगों को इबादत से कोई रोक नहीं सकेगा, वो इबादत पे डटे रहेंगे। और सबसे पहले वो लोग हैं जो नेक, यहाँ आमाल लिखा हुआ, ये नेक माहौल है असल में, नेक माहौल में जुड़ते हो। जैसे किसी शेख के पास आना जाना हो, या किसी नेकी के माहौल में आना जाना हो। ये नेकी का माहौल ऐसा, ऐसी बरकत वाली चीज है कि कई मर्तबा गुनाहों के समंदर में इंसान होता है, मगर वहां उसको नेकी का माहौल मिल गया। ये नेकी का माहौल ऐसी बरकत वाली चीज इंसान को वहां भी नेकी पर खड़ा कर देती है। तो कई मर्तबा लोगों के जहन में होता है कि जी बहुत सारे मगरबी ममालिक कैसे हैं, वहां पे बहुत फहाशी आम है, वहां पे गुनाह बहुत आम है, शराब बहुत आम है, जिना बहुत आम है। मगर कई मर्तबा वहां पे जो मस्जिदें लोग आबाद करते हैं और जो लोग उन मस्जिदों से जुड़ते हैं, कई मर्तबा और ज्यादा नेकी में आ जाते हैं। आम जो इस्लामी मुल्कों में रहने वाले लोग हैं उनसे भी ज्यादा नेक हो जाते हैं, उनसे भी ज्यादा इबादत गुजार हो जाते हैं। हमारे करीबी दोस्त फरमाते हैं कि मेरे मामू या मेरे खालू, कहने लगे कि हमारे घर आए अमेरिका में रहते थे और उन्होंने फरमाया कि पता चला कि जी अमेरिका में रहते हुए पिछले 20-22 साल से तहज्जुद कजा नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि जी वहां क्योंकि माहौल ऐसा है, चिड़ियां वगैरह बहुत थी जहां हम रहते थे, तो सुबह तहज्जुद के औकात में चिड़िया आती और शोर मचाती तो मैं जाग जाता, ये तरतीब बनी हुई थी बड़े सालों की, तो थोड़ी सी ये मदद हो जाती थी उठने की। कहने लगे कि मुझे यकीन था अब यहां पाकिस्तान आजकल आया हुआ हूं तो शायद तहज्जुद नहीं मिलेगी, जाहिर है जहां रह रहा हूं वहां ऐसा माहौल तो नहीं है कि बहुत कुछ चिड़ियाएं हो जो सुबह आती हो। मगर कहने लगे कि जितने दिन यहां रहा यहां भी कुछ चिड़िया आती थी जो सुबह आके जगा देती थी। तो कई मर्तबा वो लोग जो बेदीनी के माहौल में दीन से जुड़ जाते हैं, अच्छे माहौल से जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उनको इबादत पर पूरी इस्तेकामत अता फरमा देते हैं। हिंदुस्तान के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका वाक्य बड़ा मशहूर है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह। वो खुद लिखते हैं कि जी हम आलिम बन रहे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम समझे जाते थे। कहते हैं आलिम बन गए तो बुजुर्गों के पास आना जाना रखते थे, कभी कभी जाते थे, मगर हमारा मकसद कोई इबादत ज्यादा करना नहीं था, बस आलिम थे, दीन पढ़ाते थे और नॉर्मल नमाज वगैरह पढ़ ली। और वहां हजरत की खानकाह में तो खूब इबादत का माहौल होता था, लोग तहज्जुद पे उठे हैं, फिर फजर है, फिर इशराक है, फिर तस्बीहात है, फिर तिलावत और मुराकबा। तो खुद फरमाते हैं कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो ओवरवेल्म्ड हो जाता था इस माहौल से, यानी मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा इबादत का माहौल है, मेरे लिए नहीं है। मगर वहां जाते जरूर थे हजरत की खानकाह पे कि जी बुजुर्ग हैं, कभी उनसे कोई दुआ करवा ली, कोई बात कर ली। फरमाने लगे कि एक मरतबा जब जाते थोड़ी देर ठहरते फिर हजरत से इजाजत लेके आ जाते, एक मरतबा जाने लगे तो हजरत ने फरमाया कि भाई ठहर जाओ आज की रात यहाँ पे। उन्होंने फरमाया मियाँ रशीद अहमद आज की रात यहाँ ठहर जाओ। कहते हैं बड़ा ही मुझे बोझ लगा कि ये क्या, सुबह मैंने क्लासेस पढ़ानी है और हजरत ने फरमा दिया रात ठहर जाओ यहाँ पे। अब पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा हजरत ने कोई हुक्म दिया था तो उसको टालते हुए भी शर्म आ रही थी, तो इस अदब की वजह से उन्होंने कहा ठीक है हजरत ठहर जाता। अब उनको पता था यहाँ खानकाह में तो रात को लोग तहज्जुद में उठते हैं, फिर फजर, फिर तिलावत और फिर तस्बीहात, फिर इशराक की नमाज, बड़ा माहौल है इबादत का। और वो कह सोच रहे थे कि जी इतना सारा कुछ तो मैं करता भी नहीं हूं। तो रात को ही हजरत से अर्ज कर दी कि हजरत मैं तहज्जुद में नहीं उठूंगा, मेरा मामूल नहीं है, तो मुझे ना उठाया जाए, मैंने सुबह क्लासेस भी पढ़ानी है तो इसलिए और मुश्किल होगी मुझे। हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा, इनको नहीं उठाया जाएगा। और फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद की चारपाई हमारे साथ लगवा दी जाए, उन चारपाई हजरत के साथ रखे। तो फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक्त हजरत बेदार हुए और वजू करके और तशरीफ लाए और नवाफिल अदा किए। अब पूरी खानकाह जागी हुई है, लोग जागे हुए हैं, हजरत भी जागे हुए हैं, मैं अकेला सोया पड़ा हूं तो कुछ शर्म सी भी आ रही थी। आखिर को उठ के गया, वजू करके और नवाफिल अदा किए तहज्जुद के, हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे और मैं भी हजरत के पीछे बैठ के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लग गया। फरमाने लगे कि सुबह जब जाने का वक्त आया तो हजरत ने फरमाया कि जिक्र कर रहे थे बेहतर तो ये है कि सीख के कर लेते, अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये इबादत में मजा आया तो मैंने हजरत से अर्ज की कि हजरत आप सिखा दें। हजरत ने फरमाया कि जी अगर तुम हमारे पास 40 दिन रह जाओ तो ये सारा जिक्र अजकार सीख सकते हो। मैंने कहा जी मैंने ये फैसला किया कि मैं रह जाता हूं, बस ये 40 दिन जो नेक माहौल में जुड़ने का मौका मिला, जिंदगी का रुख इबादत पे पक्का हो गया। और जो शख्स इबादत खूब अल्लाह की करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इज्जतें भी देते हैं, अल्लाह ताला उसको सुकून भी देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना कुर्ब भी अता करते हैं। तो खूब इबादत का शौक नेक माहौल में जो जुड़ने वाला है उसको नसीब हो जाता है, ये इबादत पे डटा रहने वाला है। तो यही हजरत गंगोई, एक मर्तबा उनको इनवाइट किया गया क्योंकि बड़े आलिम थे, किसी बड़े जलसे में, दीनी जलसे में बुलाया गया। जलसे का वक्त खत्म हुआ और मगरिब की अजान हो गई, तो जलसे गाह के बराबर में मस्जिद थी जहां नमाज के लिए आगे जाना था, मगर लोग मिलने वाले, मुसाफा करने वाले इतने थे कि जब हजरत नमाज के लिए पहुंचे तो एक रकत निकल गई थी। तो नमाज अदा की और अपनी रकत जो निकल गई थी उसको पूरा किया, उसके बाद एक ठंडी सांस ली कि आज 27 साल बाद पहली मर्तबा मगरिब की नमाज की तकबीर उला कजा हुई है। अल्लाहु अकबर। तो इतना ज्यादा इंसान इबादत पे डट जाता है वो शख्स जो नेक माहौल में जुड़ा हुआ होता है। तो जो नेक माहौल में जुड़ेगा वो पक्का है कि वो इबादत के साथ जुड़ गया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलमरु अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के दीन पे है। नेकों के साथ दोस्ती हो गई तो आपका दीन भी वैसा ही हो जाएगा जैसे नेकों का दीन है। तो ये बड़ी सआदत होती है अगर किसी को नेक माहौल मिल जाए। कल कयामत के दिन ही पता चलेगा कि जो नेक माहौल में आना जाना रखा उसकी क्या कदरों की कीमत है। तो इबादत पे डट जाने वालों के तीन सिफात हैं, एक ये कि वो नेक माहौल में जुड़ते हैं, दूसरा इबादत पर डट जाने वाले वो लोग होते हैं जिनको जिक्र में फनाइयत नसीब हो जाती है। जिक्र में फनाइयत का मतलब क्या होता है? जिक्र में फनाइयत का मतलब ये है कि इबादत करते हुए इतना अरसा गुजर जाता है कि इबादत करना जो है वो इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाता है। जैसे एक चीज की आदत लग जाती है ना, इबादत की भी आदत लग जाती है। तो मशायख ने इसकी डेफिनेशन, फनाइयत की डेफिनेशन ये बताई कि ये जो जिक्र है ये दिल का वसफ बन जाता है। जैसे आंख हर वक्त बस देख रही होती है ना, और कान हर वक्त सुन रहा होता है, चाहे आप दिमागी तौर पे चाहें ना चाहें, जिसको फनाइयत नसीब होती है उसका दिल भी हर वक्त अल्लाह की याद में होता है, उसको इतनी ज्यादा इस जिक्र की आदत हो गई होती है। तो यूं समझ लें कि इबादत जो है उसके लिए गिजा की मानिंद हो जाती है, खाने पीने की मानिंद। जैसे हमें थोड़ी देर तक अगर भूखे रहेंगे तो आखिर को भूख लगी जानी है। तो जिसको जिक्र में फनाइयत नसीब होती है उसको भी बस वो ज्यादा देर अल्लाह की याद से दूर रह ही नहीं सकता। जिक्र उसके लिए गिजा की तरह है, थोड़ी देर गुजरेगी तो उसके दिल करेगा कि अच्छा मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। और जो शख्स इस तरह से अल्लाह को याद करता है उसकी जिंदगी में गुनाह भी नहीं होते, उसकी तवज्जो का मरकज सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हो जाती है। तो ये वो लोग हैं जो जिक्र पे डट जाते हैं। इसीलिए हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दारुलूम का संगे बुनियाद रखवाना था, उन्होंने कहा एक ऐसे शख्स से रखवाऊंगा जिसने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। अब वो ना कोई बड़े आलिम ना कोई मशहूर आदमी था, घास काटने वाले एक साहब थे मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी के मामू, घास काटते थे, उनको बुला के हजरत ने रखवाई संगे बुनियाद। और क्यों रखवाई? कि बस सारा वक्त अल्लाह की याद में गर्क थे। हमने फरमाया कि ये बंदे ने कभी जिंदगी में ना गुनाह किया ना गुनाह के बारे में सोचा है। तो जिसको जिक्र में फनाइयत नसीब हो गई, अल्लाह वो तो अल्लाह की याद में इबादत पे डट गया। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको ये फनाइयत नसीब हो जाए उसके उसको उम्र नूह भी दे दी जाए, नूह अलैहि सलातो सलाम जितनी उम्र भी दे दी जाए ना, तो इस उम्र में भी वो भूलना भी चाहे तो भी नहीं भूल पाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत को, कि एक मर्तबा अगर उसको ये फनाइयत नसीब हो जाए तो। तीन सिफात हैं उन लोगों की जो इबादत पे डट जाते हैं। एक वो जो नेक माहौल में जुड़ते हैं, दूसरे वो लोग जिनको जिक्र करते हुए इतना अरसा गुजर जाता है कि उनको जिक्र में फनाइत नसीब, और तीसरा वो शख्स जिसकी तबीयत में आजिजी होती है, जिसकी तबीयत में झुकाव होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही आजी वाले के बारे में फरमा दिया कि ये अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है, ये इबादत पे डट चुका है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, वइबादुर्रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्दी हुना, जो रहमान का इबादत गुजार बंदा है वो जमीन पर आजजी के साथ चलता है। तो जिसकी तबीयत में इतनी आजी के जाहिर होती है कि इसमें किसकी तबीयत में आजी है, अल्लाह ताला उसको भी इबादत पे डटवा देते हैं, इबादत पे पक्का हो जाता है। तो जब इंसान झुकता है, आजी करता है, अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है, अपने गुनाह और ऐब पर नजर रखता है, जब कोई मुसीबत आती है तो इधर उधर हर एक को ब्लेम नहीं करता, बल्कि यही सोचता है ये मेरे गुनाह है जो मुश्किल आ पड़ी है, तो आजिज़ी करता है। अल्लाह ताला उसको इबादत की तौफीक, इबादत पे डटे रहने की तौफीक अता फरमा। अमेरिका में एक नौजवान था, ये अपना वाक्य खुद सुनाता है कि जी जिंदगी बदल गई तो नेकी पे आ गए, अब वजह कता जो थी वो नेकों वाली हो गई, सर पे पगड़ी भी आ गई, तो अब जाहिरन लोग ये समझते थे बड़े अल्लाह वाले हैं कोई। अब वो नए नए तब्दीली आई थी तो नमाजों में, वैसे चार नमाजें तो आसान थी, फजर की नमाज में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। अब उनका गेटअप और जाहिरन ऐसे लगते थे कि ये फजर क्या, ये तो तहज्जुद भी कभी मिस नहीं करते होंगे, देखने में ऐसे बुजुर्ग लगते हैं, तो लोगों में इंप्रेशन यही बन गया था कि ये बड़े माशाल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, और हाल ये था कि फजर कभी होती कभी नहीं होती। अब वो भी लोगों को जाहिर ना होने देते, ये इंप्रेशन लोगों पर रहता ही कि हाँ जी ये फजर बड़ा पक्के हैं और तहज्जुद के भी पक्के हैं। एक मरतबा मस्जिद के कोई साथी जो हैं उनके जानने वाले इनके घर पे मेहमान बन के आ गए कि जी चंद दिन ये किसी और शहर से आए हैं, तो इनके पास रिहायश नहीं है, तो आपके साथ आपके ही अपार्टमेंट में रह जाएंगे। अब उन्होंने मेहमान को लाने में तो कोई मसला नहीं था, उनको परेशानी ये हो रही थी कि अब इनको पता चल जाएगा मेरे फजर का भांडा फूट जाएगा कि जितना बुजुर्ग मैं लग रहा हूं उतना हूं नहीं, तहज्जुद तो दूर की बात, फजर भी मेरी पक्की नहीं है। तो मेहमान को बुला लिया, मेहमान ने चंद हफ्ते रहना था, अब शर्म भी आ रही थी, सोच भी रहे थे कि 2-3 दिन में इनको मेरी फजर का पता चल ही जाएगा कि ये फजर पे उठते नहीं है, सोते रहते हैं कई मरतबा और कभी उठ भी जाते हैं। तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं जाके उनको बता ही देता हूं, कि बजाय इसके कि कोई और हीला बहाना करूं, मैं उनको ये बता देता हूं कि भाई फजर मेरी कमजोर है, तो कभी मैं उठूंगा तो मैं आपको उठा दूंगा, और आप अगर उठेंगे तो आप मुझे उठा दीजिएगा। मगर अब इतना इंप्रेशन, इतनी बुजुर्गी का इंप्रेशन बन गया था, सब यही समझते इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं कैसे ये बात मानूं कि मेरी फजर जो है बहुत कमजोर है, उठना मुश्किल होता है। मगर आखिर को सोचा कि नहीं, आजजी में बेहतरी है, मैं जाके एक्सेप्ट कर लूं उनके सामने कि मैं फजर में पाबंदी से उठता नहीं। कहने लगे कि मैं उनके पास गया, तो मैं जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने कहा मैं आप ही के इंतजार कर रहा था, जो मेहमान थे उन्होंने कहा कि भाई मेरी फजर तो बड़ी कमजोर है, आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग लगते हैं, आपकी तो तहज्जुद भी कजा नहीं होती होगी, तो आप मुझे फजर में उठा दिया करें। अब और मुश्किल हो गया बताना कि जी मैं तो फजर में मैं भी कमजोर, मगर फैसला कर दिया और आजजी की और कहा कि भाई देखो मैं भी आप ही की तरह कमजोर हूं, तो कभी आप उठ जाएं तो आप मुझे उठा दीजिएगा और कभी मैं उठ जाऊंगा तो मैं आपको उठा दूंगा। अल्लाह ताला को उनकी आजजी इतनी पसंद आई, वो खुद फरमाते हैं कि अगले 6 महीने तक फजर भी कजा नहीं हुई, तहज्जुद भी कजा नहीं हुई। तो जो लोग इबादत पे डट जाते हैं उनकी सिफत में से एक सिफत ये कि ये आजजी करने वाले लोग, अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा समझते हैं, उनकी निगाह अपने गुनाहों पे ज्यादा होती है। तो ये चंद सिफात इबादत गुजार लोगों की है जो इबादत पे डट जाते हैं। सारे अंबिया ने पैगाम यही दिया कि इबादत कर लो, और वाकई जिसको अल्लाह ने ये तौफीक दे दी उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी तौफीक दी है। दुनिया भी आसान, आखिरत भी आसान। अल्लाह ताला हमें अपने इबादत गुजार बंदों में शामिल फरमाए। ये इबादत ऐसी चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरा बंदा इबादत करते करते एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि मैं वो आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं वो जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। अल्लाह ताला हमें भी खूब इबादत की तौफीक अता फरमाए। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। याजिज एक मरतबा फिर तर्जुमा करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ भेजा उनके भाई को हूद अलैहिस्सलाम को। कौला फरमाया हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, या कौम इबदुल्लाह, ए कौम बंदगी करो, इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू, और नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, अफला तत्तकून, सो क्या तुम डरते नहीं। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। बात थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, सब कुछ उतार ले। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सब कुछ उतार ले। एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए है तेरे नाम के साथ, एक तसल्ली सी भी आए हैं तेरे नाम के साथ, एक तसल्ली सी भी आए हैं तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो गोया कोने की दौलत को समेटा उसने, गोया कोने की दौलत को समेटा उसने, दिल की दुनिया जो बसाए है तेरे नाम के साथ, दिल की दुनिया जो बसाए है तेरे नाम के साथ, एक नशा सा है जो छाए हैं तेरे नाम के साथ, एक तसल्ली सी भी आए हैं तेरे नाम के साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बी अल वहाब, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदना मुहम्मदिन मबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिरा وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.